ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। नेपाली कांग्रेस का 15वां महाधिवेशन पुष 26 से 28 गति तक काठमांडू में करने का केंद्रीय कार्य समिति का निर्णय। फिल्म क्षेत्र के सहजीकरण और नियमन के हिसाब से चलचित्र विधेयक लाने की बात पर संचार मंत्री खरेल ने दिया जोर। सर्द मौसम के कारण देशभर इन्फ्लुएंजा वायरस संक्रमण की संभावना जताते हुए एंटी फ्लू वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध करवाने की चिकित्सक संघ ने की है मांग। और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को फोन पर दी देश छोड़ने की धमकी। अब समाचार विस्तार से। नेपाली कांग्रेस ने पार्टी का केंद्रीय महाधिवेशन आगामी पोस्ट 26 से 28 गति तक काठमांडू में करने का निर्णय किया है। आज कांग्रेस मुख्यालय सानेपा में हुई केंद्रीय कार्य समिति की बैठक ने पोस्ट 26 गति से 3 दिन के लिए महाधिवेशन की तिथि तय की गई है। ये जानकारी कांग्रेस प्रवक्ता डॉ प्रकाश शरण महत ने दी। बीते अश्विन 28 गति से जारी केंद्रीय समिति की आज संपन्न हुई बैठक के निर्णय साझा करते हुए डॉ महत ने ये बात बताई। सरकार ने पिछली सरकार द्वारा लाए गए चलचित्र विधेयक को वापस न लेने की बात कही है। आज सिंह दरबार में हुई राष्ट्रीय सभा अंतर्गत विधायन व्यवस्थापन समिति की बैठक में संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री जगदीश खरेल ने कहा कि चलचित्र क्षेत्र से संबंधित कुछ संगठनों ने उनसे मिलकर चलचित्र विधेयक वापस लेने का आग्रह किया था। उन्होंने समिति से संबंधित पक्षों के साथ चर्चा कर विधेयक को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। चलचित्र विकास बोर्ड को स्वायत्तता प्रदान करने के नाम पर मनमानी नहीं होनी चाहिए, ये कहते हुए मंत्री खरेल ने इस बात पर जोर दिया कि फिल्म क्षेत्र पर नियंत्रण नहीं बल्कि सुविधा और नियमन प्रदान करने वाली कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए। बैठक में समिति के अध्यक्ष तुलसा कुमारी दाहाल ने संबंधित पक्षों के साथ विस्तृत चर्चा कर विधेयक को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। नेपाल चिकित्सक संघ ने ठंड के मौसम के कारण देशभर में इन्फ्लुएंजा वायरस के संक्रमण बढ़ने की आशंका जताते हुए फ्लू के टीके निःशुल्क उपलब्ध कराने की मांग की है। संघ ने आज जनहित में अपील जारी करते हुए इन्फ्लुएंजा वायरस के संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिए सरकार से जोखिमयुक्त व्यक्तियों को टीकाकरण के दायरे में लाते हुए हर साल समय पर ही निःशुल्क फ्लू टीके उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही विशेष रूप से बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम वाले व्यक्तियों में इन्फ्लुएंजा वायरस के संक्रमण का गंभीर असर होने की प्रबल संभावना है, इसलिए सतर्क रहने का आग्रह भी किया गया है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने कहा कि नेपाली जनता के आत्मसम्मान और स्वाधीनता के लिए वामपंथियों को एक होने की जरूरत है। पार्टी के कोशी प्रदेश इकाई द्वारा आज विराटनगर में आयोजित पार्टी एकता संदेश सभा को संयोजक प्रचंड ने यह बात कही। इस बात का जिक्र करते हुए कि जेन जेड आंदोलन ने दलों को सुधरने के लिए सचेत किया है, उन्होंने कहा कि नेपाल की राजनीतिक पार्टियां एकता और विभाजन की तकलीफें झेल चुकी हैं। सभा को सह संयोजक माधव कुमार नेपाल ने भी संबोधित किया था। विश्व एड्स विरुद्ध दिवस देश में विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम आयोजित कर मनाया गया। हर साल दिसंबर की पहली तारीख को मनाए जाने वाले विश्व एड्स दिवस में एचआईवी एड्स के बारे में जनचेतना बढ़ाने, प्रभावित के इलाज और सहयोग सुनिश्चित करने लगातार मुद्दों पर सरकार वालों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। बता दें कि नेपाल सरकार ने सन 2030 तक एड्स महामारी का अंत करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। मध्य प्रदेश के जिलों में 474 नए एचआईवी एड्स से संक्रमित रोगी पाए गए हैं। 38वें विश्व एड्स दिवस के अवसर पर प्रदेश स्वास्थ्य निदेशालय के आयोजन में आज जनकपुर धाम में संपन्न हुए एक अंतर्क्रिया कार्यक्रम में इस विषय में जानकारी दी गई। नए संक्रमितों में से 16 गर्भवती महिलाएं हैं। ये जानकारी स्वास्थ्य निदेशालय के एचआईवी संपर्क व्यक्ति राजवीर यादव ने दी। नए संक्रमितों में अधिकांश वैदेशिक रोजगार से लौटे पुरुष हैं, साथ ही महिलाएं, थर्ड जेंडर और यौन कर्मी भी हैं। सभी संक्रमितों को रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाने वाली दवा दी जा रही है, ये जानकारी मध्य स्वास्थ्य निदेशालय ने दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव को नेपाल के संविधान के अनुसार 24 घंटे के अंदर विश्वास मत हासिल करने का आदेश जारी किया है। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल और नित्यानंद पांडे की बेंच ने आज प्रदेश के प्रमुख यादव के नाम पर 24 घंटे के अंदर विश्वास मत हासिल करने का आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया, चूंकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति के मुद्दे को बिना किसी देरी के जल्द से जल्द सुलझाना जरूरी माना जाता है, इसलिए नेपाल के संविधान की धारा 168(4) के अनुसार मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किए गए सरोज कुमार यादव पर विश्वास मत हासिल करने का प्रस्ताव मौजूदा आदेश मिलने की तारीख से 24 घंटे के अंदर मध्य प्रदेश सभा में फैसले के लिए पेश किया जाएगा और अगर विश्वास मत हासिल हो जाता है तो उसी हिसाब से किया जाएगा और अगर ऐसा कोई प्रस्ताव मिलना मुमकिन नहीं है तो इस मामले में नेपाल के संविधान की धारा 168(2) के मुताबिक दूसरी सरकार बनाने या मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए जरूरी और सही कदम उठाए जाएंगे और सरकार बनाने या मुख्यमंत्री नियुक्त करने के विकल्प के बारे में कार्रवाई की जाएगी। 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज की गई थी जिसमें कहा गया था कि नेकपा एमएलए से प्रदेश संसदीय दल के नेता यादव को गैर संवैधानिक तरीके से मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन
भाग्यवानी बाबू राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजी।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ हजुर।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
है त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री कुलमान घिसिंग ने निर्धारित तिथि पर ही निर्वाचन संपन्न होने की बात कही है। आज मोरंग की बेलवारी नगरपालिका स्थित आदिवासी जनजाति भवन में आयोजित एक अंतरक्रिया कार्यक्रम में उन्होंने जन आंदोलन के बाद बनी अंतरिम सरकार का मूल दायित्व तत्कालीन समस्याओं का समाधान करते हुए निर्वाचन का वातावरण तैयार करना बताया। उन्होंने कहा कि आगामी निर्वाचन एक बड़ा अवसर है, इसलिए जनता सही नेतृत्व का चुनाव करेगी, ये विश्वास भी व्यक्त किया। निर्वाचन आयोग के कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त राम प्रसाद भंडारी ने राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल से मुलाकात की है। सिंह दरबार स्थित अध्यक्ष दाहाल के कार्यकक्ष में आज हुई मुलाकात में कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भंडारी ने आगामी माघ 11 गते होने जा रहे राष्ट्रीय सभा चुनाव के लिए आयोग की तैयारी और काम कार्यवाही के विषय में जानकारी कराई। ये जानकारी अध्यक्ष दाहाल के सचिवालय ने दी। निर्वाचन आयोग ने आगामी फागुन 21 गते होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव अंतर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली के लिए कांतिपथ स्थित आयोग में आज निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय की स्थापना की। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली के निर्वाचन अधिकृत पद की जिम्मेदारी आयोग के सचिव महादेव पंत और सहायक निर्वाचन अधिकृत पद की जिम्मेदारी आयोग के सह सचिव एवं कानून महाशाखा प्रमुख यज्ञ प्रसाद भट्टराई को दी गई है। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली का निर्वाचन कार्यक्रम संचालन करने के लिए आयोग के सचिव को निर्वाचन अधिकृत की जिम्मेदारी दी गई है, ये जानकारी आयोग ने दी। सरकार द्वारा स्थापित भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष में नेपाल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 1,50,00,000 रूपये की सहायता राशि प्रदान की है। आर्थिक मंत्रालय में आज आयोजित एक कार्यक्रम में कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष गोविंद लाल संघई, निदेशक कमलेश कुमार अग्रवाल और कंपनी के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण रमण पराजुली ने संयुक्त रूप से 1,50,00,000 रूपये का चेक अर्थमंत्री रामेश्वर खनाल को हस्तांतरित किया। ये जानकारी अर्थ मंत्रालय के प्रवक्ता टंक प्रसाद पांडे ने दी। विक्रम संवत 2082 भाद्र 23 और 24 गते को जिनजी आंदोलन के दौरान हुई क्षति के पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान और राहत आदि कार्यो के लिए नेपाल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष में ये राशि योगदान की है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। वेनेजुएला के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को देश छोड़ने की धमकी दी है। ट्रंप ने कल रविवार को स्वीकार किया था कि उन्होंने मादुरो से फोन पर बात की थी, हालांकि तब दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई थी ये पता नहीं चल पाया था। मियामी हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने फोन पर निकोलस मादुरो को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप खुद को और अपने परिजनों को बचाना चाहते हैं तो तुरंत देश छोड़ना होगा। ट्रम्प ने मादुरो उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस और उनके बेटे को सुरक्षित देश से बाहर निकलने का ऑफर दिया। इसके लिए शर्त रखी गई उन्हें तुरंत देश छोड़ना होगा। हालांकि वेनेजुएला ने इन शर्तों को मानने से इनकार किया, जिसके बाद वार्ता विफल हो गई। वेनेजुएला के रास्ते यूएस में ड्रग्स की सप्लाई पर अमेरिकी सख्ती अपनाए हुए हैं। हाल ही में ट्रंप ने वेनेजुएला में एयर स्पेस बंद करने की घोषणा कर दी, जिसे मादुरो सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के खिलाफ बताते हुए कहा कि ये किसी स्वतंत्र राष्ट्र की संप्रभुता के प्रति सीधी धमकी है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा था, सभी एयरलाइंस पायलट, ड्रग डीलर और ह्यूमन ट्रैफिकर्स से निवेदन है कि वेनेजुएला के ऊपर और आसपास के एयर स्पेस को पूरी तरह से बंद करने पर विचार करें। अमेरिका लगातार आरोप लगाता रहा है कि वेनेजुएला के रास्ते से यूएस में ड्रग्स की सप्लाई हो रही है। इसी वजह से कैरेबियन सागर में अमेरिका ने बीते कुछ हफ्तों में हमले तेज कर दिए हैं। अमेरिका ने यहां 20 से ज्यादा जहाजों पर हमला किया और 80 से ज्यादा लोग मारे गए। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाली कांग्रेस का 15वां महाधिवेशन पुस 26 से 28 अगस्त तक काठमांडू में करने का केंद्रीय कार्य समिति का निर्णय। फिल्म क्षेत्र के सहजीकरण और नियमन के हिसाब से चलचित्र विधेयक लाने की बात पर संचार मंत्री खरेल ने दिया जोर। सर्द मौसम के कारण देश भर इन्फ्लुएंजा वायरस संक्रमण की संभावना जताते हुए एंटी फ्लू वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध करवाने की चिकित्सक संघ ने की है मांग। और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को फोन पर दी देश छोड़ने की धमकी। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।